हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक डोडामनी और आप सुन रहे हो मेरा पॉलिटिकल पॉडकास्ट। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिस्टर राहुल गांधी जी की, जो कांग्रेस के अध्यक्ष है। आज आपने देखा होगा कि संसद में जब पीयूष गोयल जी बजट पेश कर रहे थे, तब उन्होंने काफ़ी बड़ा ऐलान कर दिया कि जो भी टैक्स का पहला स्लैब है वो 5 लाख तक हो जाएगा। तो 2.5 से डायरेक्टली 5 लाख तक उन्होंने स्लैब बढ़ा दिया है। 5 लाख तक किसी को भी अभी टैक्सेस नहीं भरना है। तो ये जो डेवलपमेंट है, उस टाइम पे जो जोर जोर से तालियां बज रही थी, जो बेंचेस बज रहे थे, उसके बीच कैमरामैन ने राहुल गांधी के चेहरे पे जब कैमरा घुमाया तो उनका जो शक्ल है वो देखने लायक बन गया था। और उन जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे, तब वो अपना जो डिसअपॉइंटमेंट है वो छुपा नहीं पाए, क्योंकि उनको भी कहीं दिल में पता चल गया कि ये जो बजट है वो मिडिल क्लास को, जो फार्मर्स है उनको और जो लेबर्स कैटेगरी है उनको भी ये खुश करने वाला है। तो जो भी इश्यूज थे इम्पोर्टेंट, उस पर राहुल गांधी जी की बैंड बजा दी है आज मोदी सरकार ने। और देखा जाए तो राफेल का जो मुद्दा है, मनोहर पर्रिकर के साथ जो मुलाकात हुई उसके बाद वो भी उल्टा पड़ गया है, क्योंकि राफेल का जो इशू है उसके ऊपर 3 स्टेट्स में पहले ही राहुल गांधी जीत चुके थे, कांग्रेस जीत चुकी थी, और मेरे ख्याल से उसको वहाँ पे ही रुका देना चाहिए था। लेकिन राहुल गांधी ने कोशिश की कि इसको आगे बढ़ाता जाए और इसी को मुद्दा बना के हम आगे का जो लोकसभा इलेक्शन है वो भी जीत सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा क्रिएटिव होना और थोड़ा सा इनोवेटिव होना इम्पोर्टेंट था, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने ही राफेल में कोई गड़बड़ी नहीं पाई, तो उसके बाद इसको वहाँ पे ठंडे बस्ते में डाल के जो बाकी के इश्यूज़ है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है और जो डीमोनेटाइजेशन के वजह से जो नुकसान हुआ है व्यापारी लोग को, जो छोटे बिजनेसेस चलाते हैं, उन सब इश्यूज़ पे फिर से एक बार ध्यान देना चाहिए था। फार्मर्स तो पहले भी डिस्ट्रेस में थे, आज भी डिस्ट्रेस में है, और उनके लिए जब तक कोई लॉन्ग टर्म के जो सॉल्यूशंस है वो नहीं ढूंढता, तब तक उनका हमेशा पॉलिटिशियंस से एक्सपेक्टेशन तो रहेगा ही। तो वो फार्मर्स का इशू है। तो ये कुछ इश्यूज है जिस पे राहुल गांधी को बात करनी चाहिए थी, लेकिन वो राफेल को लेकर बहुत लंबे टाइम तक बैठ गए। और जब वो मनोहर पर्रिकर को मिले गोवा में, तो उसके बाद जो हुआ वो तो सबको पता है, क्योंकि उनकी जो मुलाकात थी वो सिर्फ 5 मिनट की थी। और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उनका जो भी प्रोग्राम हुआ वहाँ पे उन्होंने ये बता दिया, लोगों को ऐलान किया कि मैंने पर्रिकर से बात की और उन्होंने मुझे ये बताया कि राफेल का डील के पहले मुझे पूछा भी नहीं गया था जबकि मैं संरक्षण मंत्री था। तो जो ये जो स्टेटमेंट है उसको पर्रिकर जी ने पूरा का पूरा नकार दिया। उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मुझसे सिर्फ 5 मिनट की मुलाकात थी और उसमें सिर्फ मेरा हालचाल पूछा था राहुल गांधी जी ने। अगर उन्होंने बाहर जाके उसका पॉलिटिकल इस्तेमाल करने की कोशिश की है उस मुलाकात की, तो ये उन्होंने काफ़ी गलत किया है। अब राहुल गांधी क्या करते हैं, अभी जो झूठ है वो तो पकड़ा गया, लोगों के सामने उनकी इमेज खराब हो गई कि एक बीमार आदमी को जो पैनक्रियाटिक कैंसर जैसे बड़े बीमारी से जूझ रहा है, उसका इस्तेमाल आप अपने पॉलिटिकल गेन के लिए कर रहे हो। और जो राफेल है जिसमें से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने हवा निकाल दी है, उसको राइट बताने के चक्कर में आप इस लेवल पे आप गिर सकते हो। तो ये जो हुआ है, उसके बाद फिर राहुल गांधी जी ने उल्टा फिर से उनको खत लिखा, जिसमें उन्होंने बोला कि मैं समझ सकता हूँ आपके ऊपर कितना प्रेशर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कि आप ये सब बताना नहीं चाहते। तो ये तो और भी गलत कर दिया उन्होंने, उसको अगर उधर ही छोड़ देते थे तो चल जाता था। बट जो एक सिंपथी का उनको फ़ायदा हो सकता था राहुल गांधी को, वो अब नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी की गलतियां ही कांग्रेस के लिए काफ़ी है जीतने के लिए। तो अगर बीजेपी कुछ गलतियां करती है तो उसको वहां पे ही रखना चाहिए, और तुम और उसके ऊपर गलती करते हो तो ऑब्वियसली वहां पे एडवांटेज आप बीजेपी को दे देते हो। तो यही राहुल गांधी ने किया है, तो आई गेस अभी भी उनमें वो मैच्योरिटी नहीं है जो एक सीजन्ड पॉलिटिशियन के पास रहनी चाहिए। तो एनीवेज पर्रिकर जी बीमार है, काफ़ी टाइम से वो बीमार है, और मेरे ख्याल से US में उनका इलाज चल रहा था तब बीजेपी वालों ने काफ़ी बवाल मचाया था कि हमें वो दिखाओ वो कहाँ पे है, वरना उनको मृत घोषित कर दो। तो इस तरीके के घटिया पॉलिटिक्स इंडिया में चल रही है कांग्रेस द्वारा, और बीजेपी ने हमेशा यही बोला है कि जो पर्रिकर है उनके ऊपर हमने सौंप दिया है कि अगर वो नहीं चाहते कि कंटिन्यू करना तो वो करे और नहीं करे, और अगर वो चाहते हैं कि इस हालात में भी अगर वो खड़े रहना चाहते हैं तो एज अ गोवा CM वो खड़े रह सकते हैं। उनका संरक्षण मंत्री का पद से जाना सही था, उन्होंने वो किया, सीतारमन जी को डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया, और उसके बाद लोगों के कहने पे सिर्फ इसलिए कि जो गठबंधन है गोवा में वो टिका रहे, इसलिए पर्रिकर जी को CM वहाँ पे बनना पड़ा। तो वो पॉलिटिकल कंपल्शन के कारण वो वहाँ पे CM है, वो चाहते हो तो भी वो उसको अभी नहीं छोड़ सकते। एंड जहाँ तक मैं उनके बारे में जानता हूँ या उनके बारे में पढ़ा है, वो खुद चाहते हैं कि आखिरी दम तक गोवा की सेवा करें, क्योंकि उनका जो चरित्र है वो बहुत ही साफ़ सुथरा रहा है, उन्होंने कभी भी कोई भी करप्शन नहीं किया, बहुत ही सिंपल लाइफ जिए है, बहुत सादगी से जिए है। वो RSS के बचपन से वो RSS के प्रचारक रहे, और RSS से डिसिप्लिन एंड एक उन्होंने शालीनता सीखी है। तो उन्होंने हमेशा ये कहा है कि मेरे लिए गोवा पहले है, ये तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ मोदी जी ने मुझे बुलाया इसलिए मैं सेंटर में मिनिस्टर बना, नहीं तो मुझे गोवा को सर्व करना ज़्यादा पसंद है। और आपने देखा भी रहेगा हाल ही में वो जो नया ब्रिज बन रहा था उसका परीक्षण करने भी गए थे, तब भी उनके नाक में वो ट्यूब लगाई हुई थी। तो इतना बुरा होने के बुरा मतलब बड़ी बड़ी बीमारी के बावजूद भी उनका जो डेडिकेशन है काम की तरफ वो बिल्कुल कम नहीं हुआ है। एंड हम सबको उनका इस बात का आदर करना चाहिए, वी शुड लर्न फ्रॉम हिम इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग हिम कि सत्ता का लालच है। 3 बार जो मुख्यमंत्री बना है वो सत्ता का लालच क्यों करेगा? तो हमेशा बड़ा पिक्चर यहाँ पे देखना ज़रूरी होता है, और मेरे ख्याल से जो इतना क्रिटिकली बीमार है उसको पॉलिटिक्स में घसीटना गलत है। आप पॉलिटिक्स को से परे उठकर अगर आप किसी के हेल्थ के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हो तो उसको वहाँ तक सीमित रखना चाहिए, उसका इस्तेमाल हम अपने पॉलिटिकल स्टंट के लिए नहीं करना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि राहुल गांधी के बुरे दिन चल रहे हैं, जो स्टेट 5 स्टेट इलेक्शन के बाद जो चमक उनमें दिखी थी वो अभी बिल्कुल गायब हो चुकी है। अभी इलेक्शन को ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मेरे ख्याल से सब पीछे छोड़ के फिर से उनको नया स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा, और उस स्ट्रेटजी के हिसाब से फिर मोदी गवर्नमेंट को अब घेरना पड़ेगा। एंड इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग मोदी गवर्नमेंट, उनको ये बताना चाहिए कि जो मोदी गवर्नमेंट जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की कर पाए उनको ये लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब तक ब्लूप्रिंट ये लोगों के सामने नहीं रखेंगे तब तक इनको लोगों से वोट नहीं मिलने वाला। ओके गाइस, सो ये था मेरा आज का पॉडकास्ट कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू मिस्टर राहुल गांधी। अगर आपको ये पसंद आया है तो मुझे आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मैंने जो बनाए हुए बाकी के भी एपिसोड्स हैं उसको ज़रूर सुने। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक डोडामनी और आप सुन रहे हो मेरा पॉलिटिकल पॉडकास्ट। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिस्टर राहुल गांधी जी की, जो कांग्रेस के अध्यक्ष है। आज आपने देखा होगा कि संसद में जब पीयूष गोयल जी बजट पेश कर रहे थे, तब उन्होंने काफ़ी बड़ा ऐलान कर दिया कि जो भी टैक्स का पहला स्लैब है वो 5 लाख तक हो जाएगा। तो 2.5 से डायरेक्टली 5 लाख तक उन्होंने स्लैब बढ़ा दिया है। 5 लाख तक किसी को भी अभी टैक्सेस नहीं भरना है। तो ये जो डेवलपमेंट है, उस टाइम पे जो जोर जोर से तालियां बज रही थी, जो बेंचेस बज रहे थे, उसके बीच कैमरामैन ने राहुल गांधी के चेहरे पे जब कैमरा घुमाया तो उनका जो मुँह शक्ल है वो देखने लायक बन गया था। और उन जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे, तब वो अपना जो डिसअपॉइंटमेंट है वो छुपा नहीं पाए, क्योंकि उनको भी कहीं दिल में पता चल गया कि ये जो बजट है वो मिडिल क्लास को, जो फार्मर्स है उनको, और जो लेबर्स कैटेगरी है उनको भी ये खुश करने वाला है। तो जो भी इश्यूज थे इम्पोर्टेंट, उस पे राहुल गांधी जी की बैंड बजा दी है आज मोदी सरकार ने। और देखा जाए तो राफेल का जो मुद्दा है, मनोहर पर्रिकर के साथ जो मुलाकात हुई उसके बाद वो भी उल्टा पड़ गया है, क्योंकि राफेल का जो इशू है उसके ऊपर 3 स्टेट्स में पहले ही राहुल गांधी जीत चुके थे, कांग्रेस जीत चुकी थी, और मेरे ख्याल से उसको वहाँ पे ही रुका देना चाहिए था। लेकिन राहुल गांधी ने कोशिश की कि इसको आगे बढ़ाता जाए और इसी को मुद्दा बना के हम आगे का जो लोकसभा इलेक्शन है वो भी जीत सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा क्रिएटिव होना और थोड़ा सा इनोवेटिव होना इम्पोर्टेंट था, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने ही राफेल में कोई गड़बड़ी नहीं पाई, तो उसके बाद इसको वहाँ पे ठंडे बस्ते में डाल के जो बाकी के इश्यूज है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है और जो डीमोनेटाइजेशन के वजह से जो नुकसान हुआ है व्यापारी लोग को, जो छोटे बिजनेसेस चलाते हैं, उन सब इश्यूज पे फिर से एक बार ध्यान देना चाहिए था। फार्मर्स तो पहले भी डिस्ट्रेस में थे, आज भी डिस्ट्रेस में है, और उनके लिए जब तक कोई लॉन्ग टर्म के जो सॉल्यूशंस है वो नहीं ढूंढता, तब तक उनका हमेशा पॉलिटिशियंस से एक्सपेक्टेशन तो रहेगा ही। तो वो फार्मर्स का इशू है। तो ये कुछ इश्यूज़ है जिस पे राहुल गांधी को बात करनी चाहिए थी, लेकिन वो राफेल को लेकर बहुत लंबे टाइम तक बैठ गए। और जब वो मनोहर पर्रिकर को मिले गोवा में, तो उसके बाद जो हुआ वो तो सबको पता है, क्योंकि उनकी जो मुलाकात थी वो सिर्फ 5 मिनट की थी, और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उनका जो भी प्रोग्राम हुआ वहाँ पे उन्होंने ये बता दिया, लोगों को ऐलान किया कि मैंने पर्रिकर से बात की और उन्होंने मुझे ये बताया कि राफेल का डील के पहले मुझे पूछा भी नहीं गया था जबकि मैं संरक्षण मंत्री था। तो ये जो स्टेटमेंट है उसको पर्रिकर जी ने पूरा का पूरा नकार दिया। उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मुझसे सिर्फ 5 मिनट की मुलाकात थी और उसमें सिर्फ मेरा हालचाल पूछा था राहुल गांधी जी ने। अगर उन्होंने बाहर जाके उसका पॉलिटिकल इस्तेमाल करने की कोशिश की है उस मुलाकात की, तो ये उन्होंने काफ़ी गलत किया है। अब राहुल गांधी क्या करते हैं, अभी जो झूठ है वो तो पकड़ा गया, लोगों के सामने उनकी इमेज ख़राब हो गई कि एक बीमार आदमी को जो पैनक्रियाटिक कैंसर जैसे बड़े बीमारी से जूझ रहा है, उसका इस्तेमाल आप अपने पॉलिटिकल गेन के लिए कर रहे हो। और जो राफेल है जिसमें से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने हवा निकाल दी है, उसको राइट बताने के चक्कर में आप इस लेवल पे आप गिर सकते हो। तो ये जो हुआ है, उसके बाद फिर राहुल गांधी जी ने उल्टा फिर से उनको खत लिखा, जिसमें उन्होंने बोला कि मैं समझ सकता हूँ आपके ऊपर कितना प्रेशर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कि आप ये सब बताना नहीं चाहते। तो ये तो और भी गलत कर दिया उन्होंने, उसको अगर उधर ही छोड़ देते थे तो चल जाता था, बट जो एक सिंपथी का उनको फ़ायदा हो सकता था राहुल गांधी को, वो अब नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी के गलतियां ही कांग्रेस के लिए काफ़ी है जीतने के लिए। तो अगर बीजेपी कुछ गलतियां करती है तो उसको वहाँ पे ही रखना चाहिए, और तुम और उसके ऊपर गलती करते हो तो ऑब्वियसली वहाँ पे एडवांटेज आप बीजेपी को दे देते हो। तो यही राहुल गांधी ने किया है, तो आई गेस अभी भी उनमें वो मैच्योरिटी नहीं है जो एक सीजन्ड पॉलिटिशियन के पास रहनी चाहिए। तो एनीवेज पर्रिकर जी बीमार है, काफ़ी टाइम से वो बीमार है, और मेरे ख्याल से US में उनका इलाज चल रहा था तब बीजेपी वालों ने काफ़ी बवाल मचाया था कि हमें वो दिखाओ कहाँ पे है, वरना उनको मृत घोषित कर दो। तो इस तरीके के घटिया पॉलिटिक्स इंडिया में चल रही है कांग्रेस द्वारा, और बीजेपी ने हमेशा यही बोला है कि जो पर्रिकर है उनके ऊपर हमने सौंप दिया है कि अगर वो नहीं चाहते कि कंटिन्यू करना तो वो करे और नहीं करे, और अगर वो चाहते हैं कि इस हालात में भी अगर वो खड़े रहना चाहते हैं तो एज अ गोवा CM वो खड़े रह सकते हैं। उनका संरक्षण मंत्री का पद से जाना सही था, उन्होंने वो किया, सीतारमन जी को डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया, और उसके बाद लोगों के कहने पे सिर्फ इसलिए कि जो गठबंधन है गोवा में वो टिका रहे, इसलिए पर्रिकर जी को CM वहाँ पे बनना पड़ा। तो वो पॉलिटिकल कंपल्शन के कारण वो वहाँ पे CM है, वो चाहते हो तो भी वो उसको अभी नहीं छोड़ सकते। एंड जहाँ तक मैं उनके बारे में जानता हूँ या उनके बारे में पढ़ा है, वो खुद चाहते हैं कि आखिरी दम तक गोवा की सेवा करें, क्योंकि उनका जो चरित्र है वो बहुत ही साफ़ सुथरा रहा है, उन्होंने कभी भी कोई भी करप्शन नहीं किया, बहुत ही सिंपल लाइफ जिए है, बहुत सादगी से जिए है। वो RSS के बचपन से वो RSS के प्रचारक रहे, और RSS से डिसिप्लिन एंड उन्होंने शालीनता सीखी है। तो उन्होंने हमेशा ये कहा है कि मेरे लिए गोवा पहले है, ये तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ मोदी जी ने मुझे बुलाया इसलिए मैं सेंटर में मिनिस्टर बना, नहीं तो मुझे गोवा को सर्व करना ज़्यादा पसंद है। और आपने देखा भी रहेगा हाल ही में वो जो नया ब्रिज बन रहा था उसका परीक्षण करने भी गए थे, तब भी उनके नाक में वो ट्यूब लगाई हुई थी। तो इतना बुरा होने के बुरा मतलब बड़ी बड़ी बीमारी के बावजूद भी उनका जो डेडिकेशन है काम की तरफ वो बिल्कुल कम नहीं हुआ है। एंड हम सबको उनका इस बात का आदर करना चाहिए, वी शुड लर्न फ्रॉम हिम इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग हिम कि सत्ता का लालच है। 3 बार जो मुख्यमंत्री बना है वो सत्ता का लालच क्यों करेगा? तो हमेशा बड़ा पिक्चर यहाँ पे देखना ज़रूरी होता है, और मेरे ख्याल से जो इतना क्रिटिकली बीमार है उसको पॉलिटिक्स में घसीटना गलत है। आप पॉलिटिक्स को से परे उठकर अगर आप किसी के हेल्थ के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हो तो उसको वहाँ तक सीमित रखना चाहिए, उसका इस्तेमाल हम अपने पॉलिटिकल स्टंट के लिए नहीं करना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि राहुल गांधी के बुरे दिन चल रहे हैं, जो स्टेट 5 स्टेट इलेक्शन के बाद जो चमक उनमें दिखी थी वो अभी बिल्कुल गायब हो चुकी है। अभी इलेक्शन को ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मेरे ख्याल से सब पीछे छोड़ के फिर से उनको नया स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा, और उस स्ट्रेटजी के हिसाब से फिर मोदी गवर्नमेंट को अब घेरना पड़ेगा। एंड इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग मोदी गवर्नमेंट, उनको ये बताना चाहिए कि जो मोदी गवर्नमेंट जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की कर पाए उनको ये लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब तक ब्लूप्रिंट ये लोगों के सामने नहीं रखेंगे तब तक इनको लोगों से वोट नहीं मिलने वाला। ओके गाइस, सो ये था मेरा आज का पॉडकास्ट कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू मिस्टर राहुल गांधी। अगर आपको ये पसंद आया है तो मुझे आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मैंने जो बनाए हुए बाकी के भी एपिसोड्स हैं उसको ज़रूर सुने। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय।